ईश्वर भक्ति में दृढ़ कैसे हो ये जानना चाहते हैं। ईश्वर भक्ति में दृढ़ होने के लिए सबसे पहले अपने बंधन को जानना बहुत जरूरी है कि हम फंसे कहाँ हैं। जब तक अपने गहरे बंधन का नहीं पता लगता, आदमी दृढ़ इच्छा लेकर ईश्वर की भक्ति नहीं करता। और जब तक आपकी ईश्वर भक्ति के लिए दृढ़ इच्छा नहीं होगी, उसमें दृढ़ता आएगी नहीं। महाराज जी ने इसका एक संक्षिप्त विज्ञान समतावलास में लिखा है। वो कहते हैं कि जीव के अंदर जो कर्तापन है या अहम भाव है, इस अहम भाव के कारण उसके अंदर वासना पैदा होती है। कर्तापन है तो आपके अंदर वासना पैदा होगी, और ये वासना तीन गुणों से युक्त होती है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। वासना जो है वो तीन गुणों से युक्त होती है। अब तीन गुणों के वशीभूत होकर, या यूं कह लें कि ये जीव स्वभाव के वशीभूत होकर कर्म करने की कोशिश करता है, और जब कर्म करता है तो कर्म का फल उसको मिलता है। और कर्म का जो फल होता है वो द्वंद्व रूप होता है। कोई भी कर्म क्यों ना कर लीजिए आप, अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा, उसका जो परिणाम होगा, उसका जो रिजल्ट होगा वो द्वंद्व रूप होगा। द्वंद्व का मतलब एक तो ये होता है कि मेरे मन के अनुकूल होगा या प्रतिकूल होगा, जो चाहता हूँ वैसा उसका नतीजा निकलेगा या उसका उल्टा निकलेगा, और जो निकला भी वो भी बाद में खुद ही बदल जाएगा, इसलिए इसको द्वंद्व रूप कहते हैं। द्वंद्व का मतलब होता है कि दो चीज़ें संग रहती हैं, एक दूसरे को निरंतर बदलती रहती है। जैसे कि महाराज कहते हैं कि जो सुख स्थिर ना रहे वो तो दुख का रूप, ऐसे घने कलेश से कैसे पावे छूट, तूने ये विचार करना है। तुझको आज किसी भी प्रकार का सुख उपलब्ध भी है तो कल को वो कहाँ गायब हो जाएगा तुझको पता ही नहीं लगेगा, देखते देखते वो दुख में बदल जाएगा। ऐसे ही आज जो तेरे सामने दुख है, आगे आने वाले समय में वो दुख सुख में बदल जाएगा। ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया नेचर में चलती रहती है, इसलिए इसको द्वंद्व कहते हैं। जैसे कि एक चंद्रमा का उदाहरण होता है, ये देखने के लिए कि द्वंद्व कैसा होता है। चंद्रमा आप देखते हैं कि अमावस्या के बाद एक एक दिन वो बढ़ता है, और जैसे जैसे बढ़ता है उसके आसपास के जो तारे हैं वो डिम होते चले जाते हैं। चंद्रमा जैसे जैसे बढ़ेगा आसपास के तारे जो है वो डिम होते चले जाएंगे, और जब पूर्णमासी होगी तो ऐसा लगेगा कि आसपास के तारे गायब ही हो गए, दिखाई नहीं पड़ रहे। लेकिन वो वहीं रुकता नहीं है, जैसे ही पूर्णमासी आएगी उसके बाद फिर वो घटना शुरू हो जाएगा। जैसे घटेगा आसपास के तारों की लाइट बढ़ने लगेगी। तो नेचर में भी ये द्वंद्व है कि हर चीज निरंतर बदल रही है, लेकिन वहां क्लैश नहीं है चीजों में, वहां सहज स्वभाव ही दूसरी वस्तुएं उसको स्वीकार कर रही हैं, नहीं कोई इसमें अंतर्द्वंद नहीं है इसका। तो ये सहज प्रक्रिया नेचर में चल रही है, लेकिन हम द्वंद में फंस जाते हैं कि आज मैंने यदि 10,000 रुपये महीने की इनकम कर ली, तो दूसरे को देख देख के मैं सोचता हूँ कि 1,00,000 रुपये की इनकम हो जाएगी तो बड़ा मैं सुखी हो जाऊँगा। 1,00,000 रुपये की इनकम हो गई, अब 1,00,000 रुपये की इनकम जब होगी तो सुख सुविधाएं आप उसी प्रकार भोगोगे, और आपके प्रारब्ध अनुसार नेचर वो परिस्थिति बदलेगी। आदत तो आपने डाल ली सुख भोगने की, अब आपकी किसी भी कारण से इनकम हो गई कम, या परिस्थितियां बदल गई, या आपके शरीर की स्थिति ऐसी हो गई कि पैसा कमाने लायक नहीं रहे आप, अब आपने गुजरान वाले प्रोग्राम पे जीना है, तो अब आप रोते रहते हो, हाय कितने अच्छे दिन थे वो कहाँ चले गए। और महाराज जी क्या कह रहे हैं, प्रेमी यदि भाग्यवश ज्यादा संपत्ति मिल भी जाए तब भी तू मर्यादा में ही भोग कर, ताकि कठिन वक्त आने पर तुझको रोना ना पड़े। तो सुख उपलब्ध होने के पश्चात भी सुख भोगने की परमिशन ही नहीं दे रही प्रकृति हमको। सारे सत्पुरुष हमको अलर्ट कर रहे हैं कि भाई होश में जियो, क्योंकि वो इस सिद्धांत को जानते हैं। इसलिए संत रविदास महाराज जी ने लिखा कि हर सुख दुख में बदल जाता है, हर सुख दुख में बदल जाता है। तो आपका जो जीवन है वो इस प्राकृतिक सिद्धांत के अनुसार चल रहा है कि आपका स्वभाव में 3 गुण हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। किसी के अंदर तमोगुण प्रबल है, किसी के अंदर रजोगुण प्रबल है, किसी के अंदर सत्वगुण प्रबल है, तो किसी में तमोगुण प्रबल है, तो तीनों में से कोई ना कोई एक किसी में प्रबल होता है और वही उसके जीवन पे उसके कर्मों में छाया रहता है। और इस गुणों के वशीभूत होकर, इस स्वभाव के वशीभूत होकर आप संसार में अपने अपने तरीके से कर्म करते हो, और आपके कर्मों में भी वो गुण प्रकट होते हैं। जैसे तमोगुण क्या है, क्रोध है, क्रोध ये तमोगुण का नतीजा है। आप देखो सारी जिंदगी क्रोध पीछा ही नहीं छोड़ता आपका, आपको होश ही नहीं रहता कि ये तो अवगुण है मैं इसको पाल रहा हूं। तुझको तो प्रैक्टिस करनी चाहिए थी निर्माण होने की, दूसरे का क्रोध सहन करने की, कि दूसरे का क्रोध जब मेरे ऊपर बरस रहा है तो कैसे अंदर से मेरे अंदर जलन हो रही है, कैसे मेरे अंदर बेचैनी हो रही है। अब मैं जब क्रोध करता हूं तो ऐसी बेचैनी उसके अंदर भी होती होगी। तूने तो इस स्वभाव को देखना था, इसका इलाज करना था, तू उसको पाल रहा है, ये कहकर कि भाई सहन करो मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, तू इसको पाल रहा है। तो ये जो स्वभाव हैं आपको कर्म करने के लिए मजबूर करते हैं, और उन कर्मों का जो फल होता है वो सुखरूप होता है या दुखरूप होता है, और यदि सुखरूप हुआ भी वो भी आगे चलकर बदल जाता है, उसने दुखरूप हो ही जाना है। जैसे मान लिया मुझको भगवान ने बड़ी संपत्ति दे रखी है और मीठा खाने का शौक भी दे रखा है, अब संपत्ति भी है पैसा भी है और शौक भी है, तो खूब मीठा खा रहा हूँ। अब ये सुख जो है भोग रहे हो मीठा खाने का, अब इसने दुख में बदलना है, शरीर इस लायक नहीं रहेगा एक दिन कि आप ये शौक पूरा कर सको, उस समय आप कितना तड़पोगे। जो बीमारी लेके पैदा हुए थे तो आपने इस जन्म में उस बीमारी को और मल्टीप्लाई कर लिया, बढ़ा लिया, तो आगे के लिए दुख आप खुद ही तैयार कर रहे हो, लेकिन आपको होश नहीं। तो यही देखा होगा आपने, जब खाने के शौक थे तो पैसा नहीं था, जब पैसा हो गया तो शरीर शौक पूरे करने लायक नहीं रहा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप संसार में कुछ भी क्यों ना कर लो, आपका जो नतीजा सामने आ रहा है कर्म का वो बदलेगा। अच्छे कर्म की बात ले लो, चलो बुरे कर्म की बात आपको लगता होगा, अच्छे कर्म की बात ले लो। महाराज जी ने संगत तैयार की थी, कितने अच्छे कर्म किए थे वो, समाज के लिए भी और यदि अपने लिए बात करें तो अपने लिए भी। संगत बनी, गंगोठिया का आश्रम बना, लेकिन प्रारब्ध जो है कार्य घटनाक्रम तो उसके साथ घटना है। देश का बंटवारा हो गया, संगत उजड़ गई, प्रेमी मारे गए, आश्रम छूट गया, महाराज जी को हिंदुस्तान आना पड़ा। क्या रहा? जो एक प्रेमियों में उमंग पैदा हुई थी कि संगत बन गई है, बड़े खुश थे, लेकिन प्रकृति के अंदर कैसा विध्वंस हुआ, वो बचा क्या? फिर नैसी से रचना खड़ी हुई। और हम देखते हैं कि जितनी भी सत्पुरुषों की संगतें हैं सभी एक दिन बर्बाद हो जाती हैं। दुनिया में ऐसी कौन सी संगत है जो सत्पुरुषों ने बनाई हो और वो बर्बाद ना हुई हो? कोई है, बची है? एक भी है ऐसी? तो बुरे तो हमको लगता है कि बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन अच्छे भी बर्बाद हो जाते हैं ये हम नहीं सोचते। तो प्रकृति का ये कड़वा सच है कि यहां अच्छी से अच्छी चीज भी बर्बाद होनी ही होनी है। तो इसको ध्यान में रखना ही पड़ता है कि जो सुख स्थिर ना रहे वो तो दुख का रूप। दुख तो दुख का रूप है ही, लेकिन सुख भी दुख का रूप है, ये हम इसमें कंफ्यूज रहते हैं। एक बच्चे को जब मैं पालता हूं बचपन से लेकर, सुख की आशा में ही तो पालता हूं, और जिससे मैंने इतनी सुख की आशा पाली थी, बड़ा होकर वो क्या दुख देता है माता पिता को, ये आपके भाग्य पर निर्भर करता है। भाग्य में उस बेटे के द्वारा सुख लिखा हुआ है तो मिलेगा, नहीं तो वही जो सुख देने का स्रोत है वही आपका दुख का कारण बन जाएगा। तो ये पूरा का पूरा विधान प्रकृति का ये दुखरूप है। अब बताइए, किसी के ऊपर कर्म का बोझ बढ़ जाए यदि, तो अंदर से दुखी होता है? नहीं होता। कहता है चैन मिलना चाहिए, चैन किस रूप में देखता है वो, कर्म का झंझट कम होना चाहिए। लेकिन प्रगति कैसे होती है संसार में? प्रगति कर्म को बढ़ाकर होती है, यही तो हमें दिखाई पड़ता है। जो जितना ज्यादा कर्मठ है उतना प्रगतिशील है वो, और जितने ज्यादा कर्म करेगा उतने ही ज्यादा द्वंद्व रूपी फल भी भोगे। हर कर्म का फल जब द्वंद्व रूप है, तो किसी ने 1,00,000 कर्म किए तो 1,00,000 आइटम्स हो गए द्वंद्व वाले उसके लिए इकट्ठे। कभी कोई बिगड़ेगा, कभी कोई बिगड़ेगा, कभी कोई संभलेगा, कभी कोई संभलेगा, यही तो होता रहेगा। तो हर चेंज जब मन के अंदर क्लेश पैदा करती है, तो जितने ज्यादा कर्म होंगे उतने ही ज्यादा उसके फल होंगे, उतनी टाइप्स होंगी उसकी, उतनी उनके अंदर चेंजेस होंगे। तो मानसिक क्लेश आपका कहां पहुंचेगा जरा विचार करके देखो। इसीलिए दुनिया के बड़े से बड़े अमीर आदमी भी मानसिक चैन नहीं प्राप्त कर सकते। अब आप देखिए, बिल गेट्स है, बिल गेट्स कितनी संपत्ति इकट्ठी की है, अब सारी दुनिया में दान करता घूमता है, सेवा करता घूमता है। क्यों? क्योंकि वो संपत्ति रखकर बेचैन है कि इतनी संपत्ति मैं भोग तो सकता नहीं, इकट्ठी तो हो गई, अब मैं करूंगा क्या इसका? तो मन उसका सोचता है, ये सतोगुणी सोच है, देखिए ये तमोगुणी रजोगुणी की बजाय सतोगुणी सोच है, ये सतोगुण का प्रभाव है। तो सोचता है किसी के दुख में ये काम आ जाए तो अच्छी बात है। लेकिन ये जो भावना सुन आ रही है, इसका स्रोत तो उसकी मानसिक बेचैनी है। तो हम ज्यादा कमा के कहां पहुंच जाएंगे? जब नीड्स पूरी नहीं होती हैं तभी तो ये बात समझ में आती है, भाई खाने को ही नहीं है, खाने को तो होना चाहिए, रहने को जगह ही नहीं है तो रहने को जगह चाहिए। लेकिन जब जगह मिल जाती है रहने की, तब कहता हूँ मैं महल बना लूँ, तब कहता हूँ सबके मकान इतने सुंदर हैं, मेरा इससे तो सुंदर होना ही चाहिए, फिर उसमें मैं वैरायटी पे आ जाता हूँ। तो इस प्रकार इस प्रकृति के इस सिद्धांत को यदि हमने नहीं समझा, तो हमारे दिमाग में ये बात कभी आएगी ही नहीं कि संसार में मैं कुछ भी क्यों ना कर लूं, अच्छे से अच्छा कर्म और बुरे से बुरा कर्म, मानसिक बेचैनी मेरी सदैव बनी रहेगी, इससे मुझको कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। और जिस प्रिय शरीर के आधार पर ये सब कुछ कर रहा हूं मैं, ये शरीर ही मुझको पता लग जाएगा ये मुझको धोखा देने वाला है, इसकी मौत नजदीक है, बीच में रोगी भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है, अन्य कोई कारण भी बन सकता है इसके नष्ट होने का, इसके बदलने का। तो तेरी सारी करनी तेरी जिंदगी का फेलियोर है, ये बात सत्पुरुषों के सिद्धांत को प्रकृति के बारे में जो उन्होंने लिखे हैं उस पर गहरा मनन करके ये बात बुद्धि में बैठ जाती है। और इसको समझना चाहते हैं तो समता विलास में योग मार्ग बोध में एक चैप्टर है शुद्ध विवेक। शुद्ध विवेक का पहला ही वचन पढ़ो तो उसमें इस सिद्धांत का वर्णन मिलेगा आपको। जीव क्या है, प्रकृति क्या है, कर्म क्या है, उनका परिणाम क्या है, और वो जो परिणाम है वो केवल बेचैनी का रूप है, या यूं कहने के केवल दुख का रूप है। मेरी पूरी जिंदगी का जो परिणाम है, जो जीने का जो मेरा मेथड मैंने अपना रखा है, इसका जो रिजल्ट है वो है मानसिक बेचैनी, मानसिक क्लेश, असंतोष। पूरी जिंदगी की कमाई करके मैं असंतोष लेकर संसार से चला गया। ये विज्ञान जब मुझको समझ आता है इस विज्ञान का, तब मेरा मन जो है ना वो संसार से टूट जाता है, सब कुछ होते हुए टूट जाता है, जैसा कि महात्मा बुद्ध के साथ हुआ। कितनी सुंदर स्त्री थी, कितना सुंदर उनका पुत्र था, और क्या उनका एक सफल जीवन था, अच्छा राजपाट था, लेकिन उस सब के रहते हुए भी उसके अंदर जब विवेक जागृत हुआ वो छोड़ के चल दिया। छोड़ के चलने का मतलब उसके अंदर रस आना उसको बंद हो गया, सब कुछ होते हुए उसके अंदर से रस आना बंद हो गया। ये काम वैसे ही होता है जैसे कि आपको पता लग जाए कि किसी ने बड़ी सुंदर सी मिठाई रखी हुई है खाने की प्लेट में, लेकिन पता लग गया इसके अंदर तो पॉइजन मिला हुआ है, पता लगते ही उसका सारा जो अट्रैक्शन है वो खत्म हो जाता है, और मन कहता है इसको जल्दी जितनी जल्दी हो सके सामने से हटाओ, मैंने इसको नहीं खाना। तो मनुष्य की बुद्धि का यही स्टेटस हो जाता है, यही उसकी स्थिति हो जाती है। सत्पुरुषों ने ऐसे निर्णय नहीं कर दिया कि नानक दुखिया कुल संसार, राजा दुखिया राणा दुखिया, ऐसे नहीं कह दिया वाणी में। दुखम सर्वम अनुस्मृत, मत भूलो कि सब कुछ दुख ही है। वैदिक काल से देखो ऋषि कहते चले आए, मत भूलो कि सब कुछ दुख ही है। आप किसी संसारी व्यक्ति से कह दो ये बात, कभी स्वीकार करेगा वो? एक भी आदमी पूरे प्रकृति में नहीं मिलेगा जो इस बात को स्वीकार कर ले। वो कहेगा सुख तो है, मुझको नहीं मिल रहा, सुख भी दुख रूप है, ये कोई नहीं जानता, ये कोई नहीं जानता कि सुख भी दुख रूप होता है। ये वही जान सकता है जिसने ऋषियों के इस इन सिद्धांतों का स्वाध्याय किया हो, इसका इस पर गहरा मनन किया हो। मनन अकेले ही करना पड़ता है, याद रखिए। तो योग मार्ग बोध का चैप्टर यदि पढ़ें आप, तो इस पहले वचन को शुद्ध विवेक में पढ़कर देखिए, तो ये निर्णय दिया हुआ है वहां पर। तो केवल ये यदि पढ़ने लगे कोई, तो शायद एक वचन पढ़ने में बहुत लगा देगा, तो एक मिनट लगा देगा वो, तो पढ़ने के लिए तो एक मिनट है, और सोचने के लिए इस एक वचन पे सालों विचार करना पड़ेगा, वर्षों वर्षों विचार करना पड़ेगा। और जो आपने एक मिनट में बात पढ़ी है, हो सकता है उस एक मिनट की बात समझने में 10 साल लग जाए आपको, वो भी तब लगेंगे जब आप मनन करते रहोगे लगातार, उसकी डिटेल्स खोज, उसकी डिटेल्स भी तो लिखी होंगी जगह जगह, आपकी मदद भी की गई होगी जगह जगह समझाने में। तो सिद्धांत रूप में, परिभाषा के रूप में तो चीजें छोटी सी होती हैं, लेकिन उसकी डिटेल्स यदि बनाई जाए तो चैप्टर के चैप्टर बन जाते हैं। तो मनन क्या होता है कि मनन करने से वो डिटेल्स अंदर से ही बाहर आ जाती हैं आपकी, सारी प्रकृति का, सारी परिस्थिति का आप एनालिसिस खुद ही करते हो, खुद जो एनालिसिस करते हो वो जो डिटेल्स निकल के आती हैं उसका इम्पैक्ट आपकी बुद्धि पर बड़ा स्ट्रांग पड़ता है। किसी ने सुना दिया तो आप नहीं टिकेगी बात, इधर से सुन लोगे, हाँ बात तो ठीक है, बस खत्म हो, बड़ी अच्छी बात थी, चाल आपकी वैसी चलती रही, ना खाने में संयम, ना बोलने में संयम, ना कमाने में संयम, ना भोग विलास में संयम, वैसी जिंदगी चल रही। मुझे 50 दावतें खाने को मिल जाए मैं बड़ा खुश होता हूँ, 50 दावतें खाने को मिल गई, ये भूल जाता हूँ ये जहर अंदर जा रहा है, आगे चल के क्या होगा, मेरे मन का क्या हाल करेगा, मेरे शरीर का क्या हाल करेगा ये। तो हम लोगों की जिंदगी ऐसी चल रही है, लगता है मैं आध्यात्मिक हूँ, आध्यात्म मार्ग पे चल रहा हूँ, लेकिन यदि बुद्धि का लेवल देखूँ तो विवेक गायब है, बस वहाँ है ही नहीं विवेक। इसीलिए अध्यात्म मार्ग में प्रगति नहीं होती, भक्ति कहाँ से हो जाएगी बताओ, जब समझ ही नहीं टिक रही है मेरे बुद्धि में तो भक्ति कहाँ से हो जाएगी। महाराज जी तो कह रहे हैं कि मुंह पीला चित घनी उदासी, भक्त के ये लक्षण है, मुंह पे पीलापन आ जाता है, और आजकल के जो मॉडर्न गुरु देखो उनके गाल सेब जैसे लाल लाल होंगे, और पब्लिक कहती है तो क्या तेज आ रहा है, देखो ईश्वर का तेज है ये, हम मूर्ख लोगों का ये कमेंट होता है। इसीलिए भक्ति वही कर सकता है जो सबसे पहले इस चीज को समझता है कि जिंदगी दुखरूप है, इसमें जितने शौक पालूंगा, जितनी लोगों की नकल कर करके मैं सांसारिक लक्ष्य निर्धारित करूंगा, उतना ही मेरा जल्दी पतन हो जाएगा। और पतन का इंटरनल स्वरूप क्या है कि उतना ही मैं मानसिक रूप से ज्यादा बेचैन हो जाऊंगा। आप नकल तो कर लेते हो लेकिन उसकी मानसिक बेचैनी नहीं समझ सकते। आप तो कहोगे ना कि रिलायंस का मालिक ये अंबानी ग्रुप कितना खुश होगा, ये तो सोचते होगे, कितना खुश होगा। अब गुरु सामने बैठा हो तो सब बता देगा, पोल खोल देगा उसकी, किस किस मानसिक बेचैनी लेके घूम रहा है। हम तो ऊपर का उसका शरीर का खोल देख रहे हैं, उसका साजो सामान देख रहे हैं, बस और क्या देख रहे हो आप। और जो ईश्वर भक्त है वो मानसिक रूप से कितना संतुष्ट होता है वो आपको दिखाई नहीं पड़ता है, उसको भी देखते हो, ये तो खाता कुछ नहीं है, ये तो पहनता कुछ नहीं है, ये काय का सुखी है। सुख और दुख मानसिक चैन मानसिक बेचैनी को कहते हैं, और सुख दुख नाम की कोई चीज नहीं थी दुनिया में। किसी को बंगाली मिठाई पसंद है, उसके सामने आ जाए तो मन में कितनी खुशी होती है। और बंगाली मिठाई की जगह उसके आगे जलेबी आ जाए, जलेबी उसको अच्छी नहीं लगती है, तो कितना दुखी होगा। और जिसको जलेबी पसंद है उसके आगे जलेबी आए, कितना खुश होगा। और बंगाली मिठाई आ जाए तो अंदर से खुशी सी गायब हो जाएगी। तो वस्तु में ना सुख है ना दुख है, हमारे मन में उसके प्रति क्या भाव है, प्रश्न उसका होता है। तो इसीलिए ये जो देखा देखी हमने समाज संसार में जो हमने इच्छाएं पाल ली हैं, और इच्छाओं को पूरी करते करते हमने जो स्वभाव बना लिया है, समझे, तो ये स्वभाव शास्त्र इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा है, तमोगुणी स्वभाव, रजोगुणी स्वभाव और सतोगुणी स्वभाव। मेरे अंदर जब तक कर्तापन है, मेरे अंदर जब तक अहम भाव है, तब तक इन तीन प्रकार के स्वभाव के बंधन में मैं जीता हूँ। और इन तीन स्वभाव के कारण मेरे अंदर मन में कर्म करने की इच्छा उठती है, कर्म करता हूँ। जब कर्म करता हूँ तो उसका फल होता है। फल क्योंकि द्वंद्व रूप है, इसीलिए यदि मन अनुकूल फल मिल भी गया, मन प्रतिकूल मिला तो दुखी हुई मैं, यदि मन अनुकूल भी मिल गया वो भी आगे चलकर बदल जाना है। इसीलिए हर सुख आपका एक दिन दुख में बदल जाएगा, ये पक्की बात। इसलिए सतपुरुष कहते हैं कि शास्त्र की बात मानो, अपने जो थोड़ी सी बुद्धि है, छोटी सी संसारी बुद्धि, वो भी नकल करके तुमने सीखी है, इसके भरोसे मत जियो। शास्त्र जैसा गाइड कर रहा है उसके अनुसार सोचने की कोशिश करो, क्योंकि वो आपके जीवन का सत्य है, वो ट्रुथ है आपका, आप तो झूठ में फंसे। वो जैसे कि कोई सिगरेट पीता है, किसी ने उसका संग पकड़ लिया, वो भी सिगरेट पीना सीख गया। क्यों सीख जाता है? कहता है सिगरेट में तो बड़ा मजा है। और जो पीता है वो जानता है इस बात के लिए, आदत तो पड़ गई है लेकिन दुखदाई बहुत है, ये शरीर का क्या हाल करेगी पता है उसको, लेकिन दूसरा निकल करके उसके साथ संग लग जाता है। तो संसार के सारे शौक हम ऐसे ही पालते हैं, भूल जाते हैं ये दुखदाई चीज है, बचा रहूं तो अच्छी बात है। तो इसीलिए सब कुछ कहते हैं कि जब तक व्यक्ति मर्यादा का जीवन व्यतीत करना नहीं सीखता, जब तक उसका खाने पे संयम, देखने पे संयम, व्यवहार का संयम, हर प्रकार का संयम वो अपने अंदर धारण नहीं करता, तब तक वो ईश्वर भक्ति के मार्ग पर नहीं चल सकता। भक्ति का मतलब ये होता है कि ईश्वर को जानने की तड़प का अंदर होना। जैसे किसी को प्यास लगी हो, जितनी तेज प्यास होगी उतनी ज्यादा पानी पीने की तड़प होगी। तो मनुष्य की जो वैचारिक स्थिति है या जो बौद्धिक स्थिति है उसकी इस प्रकार की हो जाती है, सत्संग श्रवण करते करते, शास्त्रों का स्वाध्याय करते करते, कि उसको ये दिखाई पड़ने लगता है कि इस संसार में मौत और दुख के अलावा मेरे हाथ कुछ लगना नहीं है। इसलिए जो कुछ भी संसार की नकल करके ये जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, ये वेस्टेज ऑफ लाइफ है। और इसके मुकाबले में वो दूसरी चीज भी सीखता है शास्त्र से कि ईश्वर क्या है। वो ईश्वर अंतर्यामी है, मेरी देह में इसी प्रकार उपलब्ध है जिस प्रकार इस देह के अंदर मेरा मन उपलब्ध है। मन को तो जानता हूं अच्छी तरह से कि सारी बेचैनी मेरे मन के कारण ही मेरे अंदर बनी हुई है। उस बेचैनी का कारण बाहर नहीं है, उस बेचैनी का कारण मेरे अपने ही मन के अंदर मौजूद है। तो इस बेचैनी से छुटकारा कैसे मिलेगा आपको? तो इस बेचैनी से छुटकारा मिलने के लिए, प्राप्त करने के लिए, इस देह के अंदर वो ईश्वर सत्ता भी मौजूद है जो इन इस सतोगुण रजोगुण तमोगुण से मुक्त है। क्योंकि गुणों से मुक्त है इसलिए उस सत्ता के अंदर कर्तापन भी नहीं है। मैं हूं, जब मैं हूं तो एक दूसरे से कंपटीशन भी होता है, मैं हूं तो तू भी है। वो सत्ता केवल अपने आप में सर्वव्यापक है, वो निर्गुण सत्ता है, इसलिए वहां कर्म का झंझट नहीं है। जब कर्म का झंझट नहीं है तो फल का भी झंझट नहीं है। वहां कर्म ना होते हुए भी, फल ना होते हुए भी उस सत्ता का गुण क्या है? उसको सच्चिदानंद कहते हैं, सत्चित आनंद। सत उसे कहते हैं जो हमेशा जैसी है वैसी ही बनी रहती है, केवल इस सृष्टि में उसी की सत्ता है और सारा भ्रम है। जिस प्रकार उदाहरण दिया जाता है कि मोम के 50 खिलौने बना लो लेकिन सत्ता किसकी है उसके अंदर? मोम की है। खिलौने नाम की कोई वस्तु है क्या? खिलौना एक कल्पना है, सत्य मोम है। तो उसी प्रकार जो नाम रूप की हम रचना देख रहे हैं ये कल्पना है, हमारे मन की कल्पना है, उसी प्रकार जैसे स्वप्न की रचना मेरे मन की कल्पना है और उस कल्पना के अंदर जो सत्ता है, जो रियलिटी है, उसका नाम है ईश्वर। तो सत कहते हैं उसको, फिर चित्त कहते हैं, उसके अंदर होश है, चेतना है, उसके अंदर सारी वस्तुएं तो जड़ है, जमीन है ये जड़ है, हर वस्तु जड़ है, ये देह भी जड़ है, हड्डी कभी बोलती है, कभी बात करती है आपसे। तो जिसमें चेतना है, जो चैतन्य है, उसी में कहा जाता है होश है। तो आपका संबंध तो होश वाली वस्तु से होता है ना, जड़ वस्तु थोड़ा संबंध होता है आपका। तो उस ईश्वर में चेतना भी है और आनंद भी है, सत चित आनंद कहा गया ना उसको, उसमें आनंद है। ऐसा आनंद है कि जिसके अंदर वो ईश्वर भक्ति गहरी होती है और उस ईश्वर का जब बोध होता है तो ये जीव अपने ही मन को भूल जाता है। उस मन की स्थिति कहते हैं शुद्ध मन, जिसमें संकल्प उठना बंद हो जाता है। संकल्प उठेगा मन में तो गुणों का ही तो उठेगा, सतोगुणी उठेगा, रजोगुणी उठेगा या तमोगुणी उठेगा। लेकिन जब ईश्वर के आनंद का अंदर अनुभव होता है तो मन का ये जो संकल्प है ये गायब हो जाता है। उस समय इस जीव को पता लगता है कि जो शास्त्रों में पढ़ा था, जो सत्संग में श्रवण किया था, ये तो वास्तविकता है। मंगत नाम गोविंद का हरे सकल तकसीर, सारी मन की बेचैनी ये प्रभु का नाम हर लेता है। तो बताइए कि वो आनंद का सागर मेरे देह के अंदर मौजूद है और इस देह के अंदर वो बेचैनी का सागर जिसको मन कहते हैं वो इस देह के अंदर मौजूद है और मैं इन दोनों के बीच में बैठा हुआ हूं, जिसको जीव कहते हैं, जिसको बुद्धि कहते हैं। मैं भी, क्योंकि मेरे अंदर भी चेतना है, इसलिए मैं मन की हालत को भी देखता हूं और यदि कोशिश करूं तो ईश्वर की हालत भी दिखाई पड़ जाएगी, मेरे अनुभव में आ जाएगी। अभी अनुभव में नहीं है, अभी तो मैं पढ़ता हूं, सुनता हूं, सुनकर विश्वास करता हूं। महर्षि रमण से किसी ने पूछा, महर्षि रामकृष्ण परमहंस ईश्वर से बातें करते थे सीधी सीधी, तो क्या ईश्वर से बातें की जा सकती हैं? बोले जरूर की जा सकती हैं। बोले मनुष्य से एक दूसरे से बातें हो सकती हैं तो ईश्वर से बात क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल ऐसे ही हो सकती है जैसे कि आपस में एक दूसरे से बातें करते हो। अब ये महर्षि रमण कह रहे हैं ये बात। क्यों? क्योंकि चेतना है ईश्वर में। ये तो भक्तों का अनुभव बताता है कि मेरे अंदर यदि कोई प्रश्न उठता है जिसका उत्तर देने वाला कोई नहीं है, हूं मैं ईश्वर का भक्त, तो ईश्वर निराकार सत्ता होने के पश्चात भी मेरी ही भाषा में मुझको अंदर से उत्तर दे देती, वो सत्ता अंदर से बोलकर बता देती। लेकिन भक्ति हो तो मेरे अंदर, तो जो ईश्वर हमारे लिए कल्पना बना हुआ है भक्तों के लिए वो वास्तविकता होती है। ऐसे ही थोड़ा ना भक्तों के साथ जो है वो ईश्वर खेल किया करता है। रामकृष्ण परमहंस के पास एक बूढ़ी औरत आया करती थी, उसका नाम ही रखा हुआ था गोपाल की मां। कृष्ण बाल रूप में उसके साथ रहा करते थे और वही कृष्ण उस बूढ़ी मां को हाथ पकड़ के रामकृष्ण परमहंस के पास ले आते थे। अब विचार करो जरा, जो ईश्वर निराकार है वो भक्तों के साथ खेलता भी, भक्तों के साथ रहता भी, ये काल्पनिक घटना थोड़ी ना है, ये तो भक्तों के जीवन की सत्य घटना है। लेकिन जब पूर्ण गुरु से मिलोगे, ऋषि से मिलोगे या उनकी बातें पढ़ोगे तो वो एक ही बात कहेंगे कि बाहर का संग तो ईश्वर का भी छूट सकता है, इसलिए यदि सही भक्ति करनी है तो अंतर्यामी ईश्वर को जानना पड़ता है, क्योंकि तू भी देह नहीं है, देह तेरी छूट जाएगी फिर संग भी छूटेगा नहीं छूटेगा, तू जीव है और देह नाशवान है, एक दिन तो ये मौत को प्राप्त हो जाएगी, इसीलिए अंतर्यामी ईश्वर का बोध जब तक नहीं होता ये देह का बंधन इस जीव का खत्म नहीं होता। तो पहले ये विवेक चाहिए आपके अंदर, ये समझ चाहिए, इसका कितना भी विश्लेषण कर लिया जाए आपकी बुद्धि कभी भी स्वीकार नहीं करेगी कि संसार दुख रूप है। ये तभी स्वीकार करेगी जब आप खुद मेहनत करोगे, इस पर गहरा मनन करोगे। मैं तो महाजी का केवल एक वचन आपको सामने उसका एनालिसिस रखा है, आप खुद पढ़कर देखना शुद्ध विवेक का चैप्टर, छोटा सा ही है लेकिन पढ़ने में तो शायद पूरा चैप्टर पढ़ने में आपको एक घंटे में पढ़ लोगे, आधा घंटे में पढ़ लोगे, छोटा सा ही होगा, लेकिन मनन सारी जिंदगी करना पड़ेगा उसको। मैं तो जब भी यहां पे आता हूं ये चैप्टर जरूर पढ़ता हूं, क्योंकि ये समझ को कितना रिफाइंड कर देता है, ये कि जैसा गुरु विचार करने को कह रहा है बुद्धि वैसा ही विचार फिर यहां रहकर करती रहती है, उस विचार के कारण ही बुद्धि ईश्वर को याद रखना चाहती है, संसार को भूलना चाहती है। तो ये बिना मनन के ये काम नहीं हो सकता, और जब ये विवेक आपके अंदर पक्का होगा आप खुद देखोगे कि संसार का रस आपके मन से गायब हो जाएगा। काम सारे होंगे, खान पान पहनावा व्यवहार सब कुछ होगा, लेकिन रस उसका गायब हो जाएगा। और जिसको सिमरन करने की आदत है, सिमरन करने का स्वभाव है, उसका जब संसार से रस गायब होगा तो खुद देखेगा वो कि ईश्वर के अंदर रस आने लगा है। ये मन ऐसे ही नहीं रहता, ये मन फिर ईश्वर में रस लेने लगता है, और ये वो रस है जो निरंतर जिसने बढ़ना है, इसने कभी कम नहीं होना है। तो ये फिर आपको ईश्वर प्राप्ति करा के ही छोड़ता है, आपको ईश्वरमय ही बना देता है। तो इसीलिए जब तक आपके अंदर विवेक परिपक्व नहीं है, आपके अंदर वैराग्य नहीं आएगा, अर्थात संसार के प्रति राग आपका खत्म नहीं होगा, और जब तक राग खत्म नहीं होगा ईश्वर नाम में रस नहीं आ सकता, फिर भक्ति कैसे दृढ़ होगी। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास गरीबी हो या अमीरी हो। अमीरी हो तभी भक्ति हो सकती है, गरीबी हो तभी भक्ति हो सकती है। संसार की कैसी भी परिस्थिति हो, यदि हाँ आपके अंदर विवेक है तो आप भक्ति कर सकते हो और आपकी दृढ़ भक्ति हो सकती है। इसीलिए मैं तो ये कहूँगा कि समता विलास का गहराई से अध्ययन करें। महाराज जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन ये एक ग्रंथ ही सारी जिंदगी अध्ययन करने के लिए है। ये कभी मत समझ लेना कि बुद्धि के लेवल से मुझे समझ आ गया, इसका मतलब इसका अध्ययन पूर्ण हो गया। ये ग्रंथ पहली बार तो पढ़ोगे तो समझने के लिए है, कई बार पढ़ने के बाद जब समझ में आएगा उसके बाद सारी जिंदगी मनन करने के लिए, इसके अनुसार ही मैं सोच रहा हूं या नहीं सोच रहा हूं, ये हर वक्त आप देखेंगे। जब भी उसमें से एक चैप्टर निकाल के पढ़ेंगे, आप कंपेयर करेंगे कि जैसा ये महाराज जी गाइड कर रहे हैं मैं वैसा ही सोच रहा हूं क्या, मेरी करनी वैसी ही चल रही है क्या, मेरा व्यवहार क्या वैसा ही हो रहा है क्या, तब आपको पता लगेगा नहीं हो रहा है। तब आपको कंप्लेंट भी नहीं होगी, मेरा सिमरन में मन क्यों नहीं लग रहा है, इस कारण नहीं लग रहा है कि मैंने अपनी चाल बदली ही नहीं। 2 घंटे रोज सिमरन करता हूं फिर भी मन नहीं लगता, क्योंकि मेरी चाल ही नहीं बदली है। घंटे क्या करेंगे उसमें, तो अभी तो हमको अपना खोट ही नजर नहीं आता, फिर हर वक्त आपको अपना खोट नजर आएगा। और इतना ही नहीं, यदि विवेक आ गया आपके अंदर तो जिंदगी की बर्बादी भी नजर आएगी। मैं अपने हाथों से अपनी जिंदगी का नाश क्यों कर रहा हूं, अरे जीवन तो मैं अपने लिए जी रहा हूं ना। तो इसीलिए सत्पुरुषों की बातों का स्वाध्याय, उस पर गहरा मनन, और उसके अनुसार जीवन का कोई ना कोई प्रोग्राम बनाकर उसी गति से चलना, उसी डायरेक्शन में चलना जिस डायरेक्शन में चलने के लिए सत्पुरुष या सद्गुरु कह रहा है। तो एक दिन देखेंगे कि हमारे अंदर भक्ति दृढ़ जरूर होगी, और ऐसा लगेगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। ईश्वर मिलेगा या नहीं मिलेगा तो इसका तो मुझे पता नहीं, क्योंकि ईश्वर निर्गुण है, तूने वहां तक पहुंचना है। तो पहले तो तू तेरे अंदर ये तमोगुणी और रजोगुणी संस्कार बैठे ना, ये गायब होंगे। पहले तो सतोगुणी बनेगा, और सतोगुणी जीव के क्या लक्षण होते हैं आप संत रविदास में पढ़ सकते हो। बुद्धि की जो 7 अवस्थाएं हैं, 4 अंधकार की और 3 प्रकाश की, तो 3 प्रकाश की अवस्था में जो पहली अवस्था है वो है सतोगुणी जीव की अवस्था, जिसमें सतोगुण प्रबल होता है। तो उससे तुलना करके देखोगे, आप आईना है आपके लिए, देख लोगे कि हाँ मैं कहाँ खड़ा हुआ। तो भक्ति केवल कहने से नहीं आ जाएगी, केवल सिमरन करने से भक्ति नहीं आ जाएगी, बुद्धि में वो विवेक होना ही चाहिए। और जिसकी बुद्धि में विवेक होगा उसके अंदर वैराग्य भाव होगा ही होगा, ये दोनों चीजें साथ चलती हैं। और वैराग्य के साथ जब सिमरन किया जाता है तब अंदर प्रभु का प्रेम प्रकट होता ही है, उसमें सफलता मिलती ही है। इसलिए ईश्वर कोई दूर नहीं है, कमी हमारे अंदर है। इसलिए गुरु के अनुसार सोचें, उसके अनुसार करनी करें, उसके अनुसार परहेज करें, तो निश्चित रूप से एक दिन हम प्रभु भक्त जरूर बनेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।